जीजू के बिना तुझसे रहा भी नहीं जाता, फिर भी बेफिजूल की जिद करती रहती है। इनाया ने तुरंत सर घुमाया और सवालिए निगाहों से उसे देखने लगी। अगर तेरा इतना ही मन था तो शादी से कुछ दिन पहले आ जाती, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी। अब शादी तक तू यहाँ उदास रहेगी और जीजू वहाँ परेशान रहेंगे। मेरे घर में तो कोई एक्स्ट्रा रूम भी नहीं जो मैं जीजू को तेरे लिए यहाँ रोक सकूँ, और वो यहाँ रह भी नहीं पाएंगे। मानव तंज नहीं कस रहा था, बस बोल रहा था। इनाया के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभरे और वो खोई खोई सी बोली, तुझे नहीं पता, जब से मैं वापस आई हूँ कायरव ने एक दिन सुकून से नहीं बिताया। खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बस मेरी केयर में लगा रहता है। ऑफिस के काम में इतना प्रेशर रहता है उस पर, और मेरा ध्यान भी रखना होता है। मैं बोलती भी हूँ कि वो पहले जैसे ऑफिस चला जाए, मैं अपना ख्याल रख लूँगी, सर्वेंट भी है, लेकिन मेरी सुनता ही नहीं है। कभी ऑफिस कभी घर, बस भागता ही रहता है। रात रात को ठीक से सो भी नहीं पाता, ऐसे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। बस इसीलिए मैं यहाँ आ गई। अब कम से कम कुछ दिन तो उसे ऑफिस और मेरे बीच फंसना नहीं पड़ेगा, वो अपना ध्यान काम पर लगा पाएगा, मेरे वजह से उसे परेशान नहीं होना पड़ेगा और उसे प्रॉपर रेस्ट भी मिल जाएगा। मानव शॉक था, उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ रुकने की इनाया की जिद के पीछे ऐसा रीज़न होगा। अगले ही पल दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार देखकर वो मुस्कुरा दिया। अब जब उनके लिए तूने ये डिसीजन ले ही लिया है तो अपने दिल को समझा और खुश रह, क्योंकि तुझे ऐसे उदास देखकर जीजू भी वहाँ सुकून से नहीं रह पाएंगे। मैं जानती हूँ, और मैं भी उदास होकर उसे परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन उसके बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो दूर जाने लगता है तो अजीब सी बेचैनी होने लगती है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अपने दिल को समझाने की, धीरे धीरे समझ जाएगा। अपने दिल को समझाने के साथ अपने मन को बहलाने की भी कोशिश कर। खाली बैठी रहेगी तो बोर होकर उन्हें अवर याद करेगी, इसलिए कल से अपना काम शुरू कर दे। आई भी तो तू इसीलिए है ना यहाँ, ताकि शादी की तैयारियों में आई की हेल्प करवा सके। इनाया ने गर्दन हिलाई और मानव के साथ अंदर चली आई। मनु, आई मिस यू, नित्या की मीठी सी आवाज़ मानव के कानों पर पड़ी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। तुम पिछले 5 मिनट से बस यही बोल रही हो, आगे भी तो कुछ बोलो। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, नित्या की आवाज़ में मायूसी और उदासी झलक रही थी। अब तक वो इंग्लिश में बोल रही थी, मानव के टोकने पर वही बात हिंदी में कही तो ना चाहते हुए भी उसकी हंसी छूट गई। तुम हंस रहे हो, तुम्हें मेरी फीलिंग्स मजाक लग रही है, नित्या गुस्से से भड़क उठी। मानव ने तुरंत अपनी हंसी को कंट्रोल किया, पर हल्की मुस्कान अब भी उसके होंठों पर मौजूद थी। नहीं, मैं इसलिए नहीं हंस रहा, वो तो पहले तुम इंग्लिश में आई मिस यू बोल रही थी, और जब मैंने बोला तो वही बात हिंदी में कहने लगी, बस इसीलिए मुझे हंसी आ गई, तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ा रहा था मैं। नित्या ने नाराजगी से उसे घूरा और गालों को फुलाते हुए चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। दोनों वीडियो कॉल पर थे। नित्या ने मुंह ऐसे फेरा जैसे कह रही हो कि जाओ, अब मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ये उसका नाराजगी जताने का तरीका था, और ऐसा करते हुए वो क्यूट सी छोटी सी बच्ची लगती थी। मानव कुछ देर प्यार से उसे निहारता रहा। आज तुम इतने उदास क्यों लग रही हो, बार बार मिस यू बोल रही हो, कुछ हुआ है क्या? मानव ने बड़ी ही चालाकी से बात का रुख मोड़ा था, शब्दों का ऐसा जाल बिछाया कि मासूम नित्या तक अपनी नाराजगी भूलकर उसके सवाल का जवाब देने लगी। मुझे आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इतने दिन हो गए हमें मिले, मेरा इतना दिल कर रहा है तुमसे मिलने का, इतना मिस कर रही हूँ मैं तुम्हें, लेकिन तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, मिस भी नहीं करते, बस मैं ही तुम्हें मिस करती रहती हूँ। नित्या ने नाराजगी से अपने गालों को फुलाया और उदास निगाहों से उसे देखने लगी। मानव के चेहरे पर संजीदगी उभर आई। ऐसा नहीं है नित्या, मैं भी मिस करता हूँ तुम्हें, मुझे भी तुम्हारी याद आती है, मेरा भी दिल करता है तुमसे मिलने का। तुम मिलते क्यों नहीं, मुझे भी नहीं मिलने देते, जब भी मिलने के लिए बोलती हूँ एक ही बात बोलते हो कि शादी वाले दिन मिलेंगे, नित्या रूठते हुए बोली और नाक से कोड़ ली। उसकी इस अदा पर मानव के लब हल्के से खिंच गए। मैं चाहता हूँ कि ये जो टाइम है उसे तुम अपनी फैमिली के साथ बिताओ, अपने डैड और दादू के साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ दिनों बाद हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरे घर ही आना है, अपने मायके जाओगी भी तो ये बात नहीं रहेगी, बहुत कुछ बदल जाएगा, इसलिए अभी जो टाइम मिला है उसे अपनी फैमिली के साथ बिताओ। नित्या ने अब की बार कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह फुलाए उदास सी बैठी रही। अच्छा चलो ये बताओ, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मानव ने उसका मूड ठीक करने के लिए टॉपिक चेंज किया। नित्या ने भी उस बात को वहीं छोड़ दिया। चल रही हैं, डैड और दादू दोनों उन्हीं कामों में बिजी रहते हैं, आज तो मैं पार्लर भी गई थी। तो तुम्हारे यहाँ शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं? हाँ, डैड मेरी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, उन्होंने तो अभी से गुरुद्वारे की बुकिंग भी करवा ली है, तुम्हारा कैफे भी तो बुक किया है, तुम्हें तो पता ही होगा। हाँ, आज ही उनका असिस्टेंट आया था और सारी बातें फाइनल भी हो गई, लेकिन तुम्हारी डैड इतनी आसानी से कैफे में शादी करवाने के लिए कैसे मान गए? मानव जरा हैरान था, बात भी हैरानी की थी, शेरगिल खानदान को कौन नहीं जानता था, और नित्या उनकी इकलौती बेटी थी, उसकी शादी के लिए वो 7-स्टार होटल बुक करते या फिर अपने घर में करवाते जो किसी महल से कम नहीं था, उनके क्लास और स्टेटस के आगे कैफे कुछ सूट नहीं कर रहा था। बहुत मुश्किल से माने, वो तो शादी घर पर करना चाहते थे। मैंने बहुत मनाया, तब जाकर मेरी खुशी के लिए माने, और वो भी इस कंडीशन पर कि सारे रिचुअल्स मेरे घर पर ही होंगे, बस तुम्हारी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग शादी कैफे में होगी, और उसके बाद आनंद कारज के लिए तो हमें गुरुद्वारे जाना ही है, वहां से हम घर आएंगे और विदाई घर से होगी। तो ये कमाल तुमने किया है, और नहीं तो क्या, डैड सिर्फ मेरी बात सुनते हैं क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, नित्या खुद पर इतराते हुए बोली और सौम्यता से मुस्कुराई। मानव बस उसकी प्यारी सी सूरत और उस पर खिली मुस्कुराहट को निहारता रहा। शॉपिंग कैसी चल रही है तुम्हारी? शॉपिंग का नाम सुनते ही नित्या की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और उसने बुरा सा मुंह बना लिया। बहुत बुरी। क्यों? मानव चौंका। नित्या ने मुंह फुलाया और उदास लहजे में बोली, मुझे कोई ब्राइडल आउटफिट पसंद ही नहीं आ रहा। दो दिन से डैड अलग अलग डिजाइनर्स को बुला रहे हैं, सब अपना बेस्ट कलेक्शन दिखाते हैं, लेकिन मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता। कैसा लहंगा चाहिए तुम्हें जो मिल ही नहीं रहा? पता नहीं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कल डैड ने एक और डिजाइनर को बुलवाया है, फिर से वो मुझे अपने डिजाइन्स दिखाएगा और मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। नित्या मुंह लटका कर बैठ गई। एक काम करो, आज तुम अच्छे से सोच लो कि तुम्हें किस तरह का लहंगा चाहिए। अपने फ्रेंड से सजेशन लो, इनाया से भी बात कर सकती हो, और कल जब डिजाइनर आए तो उसे अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देना, वो उसी हिसाब से तुम्हारे लिए लहंगा डिजाइन कर देगा। डैड भी यही बोल रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं ना, मेरा लहंगा तुम सेलेक्ट कर दो, मैं तुम्हारी शेरवानी सेलेक्ट कर दूंगी। नित्या ने चमकती आंखों से उसे देखा। पल भर में वो अपनी सारी उदासी भूल गई थी। मानव कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, फिर सर हिला दिया। अगर तुम्हें लहंगा मुझसे ही पसंद करवाना था तो पहले ही बता देती, क्यों खुद को और बाकी सबको परेशान किया? नित्या ने मुंह बिचकारा और मासूम निगाहों से उसे देखने लगी। तुम मेरे लिए लहंगा सेलेक्ट कर दोगे ना?
मुझे इन सब की ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इनाया का वेडिंग लहंगा बहुत पसंद आया था मुझे। तुम्हें इनाया की फोटो भेज दूंगा, तुम्हें पसंद आए तो बताना, फिर मैं जीजू से बात करूंगा और तुम्हारे लिए भी उसी डिजाइनर से लहंगा डिजाइन करवा लेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन तुम लोगी क्योंकि पहनना तुम्हें है। ओके, तुम मुझे फोटो सेंड कर देना, मैं देख लूंगी और तुम्हें बता दूंगी। नित्या खुशी से चहक उठी, मानो उसकी सारी चिंता एक सेकंड में गायब हो गई हो। तुम्हारी प्रेपरेशन कैसी चल रही है? अभी तो शुरू भी नहीं हुई, बस प्लानिंग हुई है, कल से स्टार्ट होगी। यूं ही दोनों के बीच बातें होती रहीं। कुछ देर में नित्या बात करते करते ही सो गई तो मानव ने कॉल कट की और वो भी सोने के लिए लेट गया। लेकिन उसे नींद आ नहीं रही थी, जहन में बस नित्या का ख्याल घूम रहा था और माथे पर सिलवटें पड़ गई थीं। टू बी कंटिन्यूड।